और शांति 9 अप्रैल 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का और यूट्यूब लाइव। जहां भी जैसे भी आपको सीधा हो आप जुड़ सकते। एक ही लिंक रोजाना के लिए रहता है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और आपका कोई सुझाव है हम सबके हित में तो वो भी आप भेज सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कैसे मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज देख पहले उसे अलग का निश्चय कराना है, फिर आगे बढ़ो। क्या कहना चाह रहे बाबा हमें? कौन बताएंगे?
पहले उन्हें बाप का परिचय देना है।
वो नबज क्या बुला थी पता नहीं, नबज नमज कैसे देखेंगे उसकी? मीठे बच्चे हर एक की नब्ज देख पहले उसे अलग का निश्चय कराना है। परिचय देने की बात नहीं की, एक नब्ज देखना है, एक अलग का निश्चय कराना, पहले उससे बातचीत करो, उसके द्वारा जानने की कोशिश करो कि उसके विचार क्या हैं परमात्मा के बारे में। नब्ज देखने का मतलब है उसको आखिर क्या क्या हो रहा है, कहां उसकी बीमारी है। पहले नाड़ी वेद या नब्ज देख करके रोग बताने वाले होते थे, ऐसे ही हमने भी जो भी हमारे पास आए पहले उससे बातचीत करो, पहले उससे जानो कि आखिर उसको बीमारी क्या है, परमात्मा के बारे में क्या जानता है, फिर समझ करके उसे परमात्मा पर निश्चय कराना है। पर अल्लाह पर निश्चय कराना माना परमात्मा पर विश्वास दिलाना। आज तक वो जिसे परमात्मा समझता आ रहा है उससे निश्चय हटाना और अब इस परमात्मा पर निश्चय बिठाना। सिर्फ परमात्मा का परिचय देना नहीं, इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हर एक की नज़र देखो पहले उसे अलग का निश्चय करा। यदि वो अलग को नहीं मानता, अलग पर उसका निश्चय नहीं बैठता तो आगे बढ़ो ही मत, फिर आगे बढ़ो। क्योंकि जिसे अलग पर निश्चय नहीं हुआ उससे कितना भी ज्ञान सुनाएंगे, कितना भी टीक करेंगे, वो टाइम वेस्ट करना। बात समझ में आया? वो हमारा उसके साथ टाइम वेस्ट करना है।
उसको परमात्मा का
क्योंकि पहले ये देख रहे हैं ना कि वो किसे परमात्मा मानता है, क्योंकि जिसे वो परमात्मा मानता है या परमात्मा को मानता ही नहीं है, पहले तो ये जानना है ना आखिर उसको बीमारी क्या है। वो किसी देहधारी को परमात्मा मानता है, किसी निराकार को परमात्मा मानता है, या प्रकृति को परमात्मा मानता है, या परमात्मा को मानता ही नहीं है। तो अब आपने उसको उस तरीके से समझाना है, सबको एक गधे घोड़े सबको एक तरीके से नहीं समझाना। कोई आया उसको परमात्मा का परिचय देने लग जाए और वो नहीं मानेगा, पहले उसकी नब्ज देखनी है, मतलब ये बात तो हाँ जी। नहीं उसे ये नहीं कहना बीमारी क्या है, उसे ये नहीं कहना कि तेरे को बीमारी क्या है, तो तेरे बीमार थोड़ा हो। उससे बातचीत करनी है, नब्ज देखनी है। जैसे डॉक्टर होता है, नाड़ी भेद होता है, वो नाड़ी को देखता है, उससे पूछता नहीं कि तुम्हें क्या बीमारी है, वो नाड़ी देखकर उसे बताता नहीं, समझ जाता है कि इसे क्या बीमारी है और फिर उसका इलाज करता है। बिना नब्ज देखे इलाज नहीं करने लग जाना है, बात समझ में आई है। नब्ज देखनी है और अपने पास रखनी है, उसको नहीं कहना कि तेरे को ये बीमारी है, खुद समझ लेना है। अच्छा इसको ये बीमारी है तो इसको इस तरीके से बताया जाए ताकि वो उसे समझ सके, उसका इलाज हो सके, सत्य परमात्मा को जान सके। सेवा करने की भी विधि तो बाबा ही सिखाएगा ना, और कोई सिखा सकता है? सोचो रोज क्या क्या बनाता है, आज आपको नाड़ी भेद बना दिया, वो भी बिना नाड़ी पकड़े नाड़ी भेद, आपने उसकी नब्ज भी नहीं पकड़नी, उसकी नाड़ी को पकड़ना भी नहीं है, सिर्फ बातचीत से उसकी बीमारी को समझना है और उसका इलाज करना। डाउट है तो पूछो, क्योंकि यदि उसे परमात्मा पर निश्चय नहीं हुआ है तो उसे आगे की बातें बताओ ही मत। बाबा सीधी सीधी स्पष्ट लाइन में समझाते, उसे मेरा परिचय मेरे पर यकीन नहीं तो वो ज्ञान की किसी बात को मानेगा नहीं। जब उसे ये यकीन हो जाएगा अच्छा परमात्मा ये है, ओ अब तक हम इतने भटके हुए थे, इतने अंधेरे में थे, तो आज समझ में आइएगा। फिर उसे सारी बातें स्वीकार होती गई। इस अवस्था तक पहुंचाना है पहले, सबसे पहला स्टेप है। देखो भाई जी, हर एक को दवाई देनी तो वही है, परंतु देने की विधि देने की युक्ति अलग अलग होती है ना। आप कोई क्रिश्चियन है तो उसको अलग तरीके से दोगे, सिख है तो उसको अलग तरीके से समझाओगे, मुस्लिम है तो उसको अलग तरीके से समझाओगे, सबको हम एक तरीके से समझाना वही है, परंतु उसकी नब्ज देखने के बाद अपनी बुद्धि में डिसाइड करना है कि इसका इलाज कैसे करना है, इसको किस विधि से समझाना। हम क्रिश्चियन को सनातन धर्म की विधि से नहीं समझा सकते, मुस्लिम को सनातन धर्म वाले को समझाने की विधि से नहीं बता सकते, क्योंकि वो देहधारी को परमात्मा मानते नहीं। हम उसको कहें कि राम परमात्मा ने कहा, ठीक है मैं मानता हूं कि राम परमात्मा ने, अब वो तो मानते हैं कि हमारा परमात्मा है, हमारा खुदा है, हमारा अल्लाह है, अल्लाह हमारा है, और किसी का तो अल्लाह हो ही नहीं सकता। वो कहेगा हमारा गॉड है, हम और किसी का हो ही नहीं सकता। उसको डिसाइड कराना है, उनकी उन बातों को समझना है, एक एक बात को, फिर आप उसे समझा सकते। ऑलराउंडर बनना है, हर धर्म हर पंथ हर मत की बात को समझना है, फिर हम उसके ऊपर अपना समय लगाएं, नहीं तो अपना समय वेस्ट नहीं करें। आपको जितना आता है आप उतना समझाएं, यदि वो परमात्मा पर यकीन ना करे तो अपनी गलती समझकर कि मेरी ही गलती है, मैं परमात्मा में यकीन नहीं करता हूं, जिसके कारण मैं जो है ना ठीक रीति से नहीं जानता हूं, जिसके कारण मैं इसे नहीं समझा पाया हूं, इसको कैसे समझाना चाहिए, आज नहीं समझा पा रहा तो कोई बात नहीं, मैं जाके तैयारी करूं, फिर पकड़ूंगा युद्ध के मैदान में आकर। पता तो लग गया कि ये क्या है, इसको बीमारी क्या है, और इस बीमारी का इलाज यदि मुझे समझ में नहीं आ रहा तो बाबा की मुरली उठाओ, किसी भाई बहन के पास बातचीत करो कि उसको ये प्रश्न है, उसकी ये समस्या है, उसे कैसे समझाया जाए। ठीक है, मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट हमें क्लियर हुआ होगा। कौन सा ये नेटवर्क चला गया।
अच्छा अच्छा,
यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना। कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता, कौन सा पुरुषार्थ मुख्य पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है, कौन सा पुरुषार्थ है ऐसा, क्या करें जो हमें क्या मिल जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए, है कोई ऐसा पुरुषार्थ। कौन सी कमी है उसे हमने क्या करना है, ठीक करना है, अपनी या किसी और की? कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? उत्तर, अंतर्मुखता का। अंतर्मुखता अर्थात, अंतर्मुखता का क्या मतलब होता है? अंतर्मुख हाँ जी, हाँ, मुझ आत्मा में अभी क्या क्या कमियां हैं? मुझ आत्मा में अभी क्या क्या कमियां हैं उनको जानना। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बात तो है ही कल्याणकारी, बाप तो है ही कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं, जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं, वे कभी देह अभिमान में आकर रूठते नहीं, क्योंकि रूठ जाने से किसका फायदा होगा और किसका नुकसान होगा? अपना नुकसान करेंगे ना। रूठते व लड़ते नहीं, उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते। वे ज्ञान की ज्यादा टिक टिक नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते हैं, याद में रहकर सर्विस करते हैं। बाबा की श्री मत पर चलते हुए जैसे बाबा ने डायरेक्शन दिया है वैसे ही सर्विस करते हैं। ओम शांति। अक्सर करके देखा जाता है, अक्सर करके देखा जाता है प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं। तो मूल बात जो बात की के पहचान की है उस पर पूरा निश्चय ना बिठाने से बाकी जो कुछ समझते हैं, बाकी जो कुछ समझते रहते हैं वे कोई की बुद्धि में बैठना मुश्किल है। बल अच्छा अच्छा बल अच्छा अच्छा कहते हैं। हाँ, आपकी बात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है कहते हैं, परंतु मानते नहीं, परंतु मानते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते। बाबा के महावाक्य हैं, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से, मुझे याद करने से क्या होगा? पच्चीस से पावन बन जाएंगे। मुझे याद करने से तुम पच्चीस से पावन बन जाएंगे। पच्चीस से पावन बन जाएंगे, ये है मुख्य बात, ये है मुख्य बात। भगवान एक ही है, वो पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, वही ऊंचते ऊंच है, वही ऊंचते ऊंच है। ये निश्चय हो जाए तो फिर भक्ति मार्ग के जो शास्त्र, वेद अथवा गीता भागवत है, सब खंडन हो गए, ऑटोमेटिक सब खंडन हो गए। तो एक ही विश्वास हो जाए कि भगवान कौन है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, एक भगवान है, एक शिव है, पतित पावन है। यही बात सबके दिमाग में पहले पहले बिठानी है, तो फिर दुनिया के जितने भी भगवान है वो रिजेक्ट हो जाए, सब खंडन हो जाए। भगवान तो खुद कहते हैं ये मैंने नहीं सुनाया, मेरा ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, वो है भक्ति मार्ग का ज्ञान, वो लिखा गया है मनुष्यों के द्वारा, वो परमात्मा नहीं है। जिन्होंने रामायण पुराण जितने भी दुनिया भर की किताबें हैं, ग्रंथ हैं, धर्मशास्त्र हैं, लिखे हैं, वो किसी न किसी मनुष्य की मन मत पर लिखे गए। वो भगवान नहीं है। ये बात हर एक की बुद्धि में बिठानी है कि परमात्मा को हम प्रूव किसी शास्त्र के आधार पर नहीं कर सकते, उसको एक परमात्मा मानेगा दूसरा नहीं मानेगा। परमात्मा वो होगा जिसको सारे संसार के धर्म परमात्मा स्वीकार करे, यदि सभी उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो वो परमात्मा नहीं है। इस पर वो ये प्रश्न उठा सकते हैं कि फिर तुम्हारे परमात्मा को भी तो सारे नहीं मानते, फिर वो कैसे परमात्मा? उनको बताना है कि वो स्वयं परमात्मा अब आकर पढ़ा रहे हैं, वो किसी शास्त्र किसी धर्म ग्रंथ को उठाकर नहीं पढ़ाते, तो वो फिर भी कह सकते हैं हमारे भी धर्म शास्त्र को उठाकर के उन्होंने नहीं पढ़ाया, वो किसी किताब को पढ़कर के नहीं पढ़ाया, उन्होंने जो उनको पता था उन्होंने वही आकर समझाया, वही लिखा, वो खुद भगवान है। श्री बाबा कहते हैं मैं ज्ञान देकर सदगति करके चला जाता हूं, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, मेरे ज्ञान देने के बाद ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। लोप होने का मतलब है मैं जब ज्ञान देता हूं तब सबको मिलता है, और जैसे ही हम सारे इस ज्ञान को लेकर जैसे भी संस्कार हमने बनाने हैं अपने बना लिए, उसके बाद ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, मीन सारी आत्माएं परम धाम चली जाती हैं और वापिस आकर अपने संस्कारों के आधार से अपने शरीर की रचना पालना करते हैं। प्रारब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। जब बाप का नित्य बैठे तो बसंदे भगवानों वाद, ये भक्ति मार्ग के शास्त्र है। ज्ञान और भक्ति आधा आधा चलती है। भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय देते हैं। मैं कहता हूँ 5000 वर्ष का कल्प है, मैं तो ब्रह्मा मुख से समझा रहा हूँ। तो पहली पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है कि भगवान कौन। ये बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक और कुछ भी समझाने से कुछ फायदा नहीं, कुछ असर नहीं होगा। सारी मेहनत ही इस बात में है। बाप आते ही हैं कब्र से जगाने, शास्त्र आदि पढ़ने से तो नहीं जागेंगे। परम आत्मा है ज्योति स्वरूप, तो उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप है। परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बनी है, जिसे जिस कारण ज्योति बुझ गई, तमो प्रदान हो गए हैं। पहले पहले बाप का परिचय ना देने से फिर जो भी मेहनत करते हैं, ओपिनियन आदि लिखते हैं, वे कुछ काम क्या नहीं रहता। इसलिए सर्विस होती नहीं है। निश्चय हो तो समझे बरोबर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे। मनुष्य ब्रह्मा को देख कितना मूंझते हैं। ये ब्रह्मा, 4 मुंह वाला ब्रह्मा होता है, क्योंकि बाप की पहचान नहीं है। तुम सब जानते हो भक्ति मार्ग अब पास हो गया, कल युग में है भक्ति मार्ग, और अब संगम पर है ज्ञान मार्ग। हम संगम युगी हैं, राजयोग सीख रहे हैं, देवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया के लिए। तो संगम युग पर नहीं, वे दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते ही जाते। उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ती जाती है, इस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है। ये समझने की बातें हैं ना। समझाने वाले भी नंबरवार हैं। बाबा रोज पुरुषार्थ कराते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, बच्चों में टिक टिक करने की आदत बहुत है। बाप को याद करते ही नहीं, याद करना बड़ा कठिन है। बाप को याद करना छोड़ अपनी ही टिक टिक सुनाते रहते हैं। बाप के निश्चय बिगड़ चित्रों तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए। यदि उसको निश्चय नहीं हो रहा बाबा के चित्र पर, तो आगे बढ़े मत। निश्चय नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। अलग का निश्चय नहीं तो बाकी दे तो जाना, टाइम वेस्ट करना, दे तो बेटे में जाना। ये बेटे क्या होता है, अलग होता है उर्दू भाषा का पहला शब्द। दूसरा होता है जैसे आ होता है, फिर बा होता है दूसरा शब्द, सा होता है तीसरा शब्द। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ए बी सी, ऐसे अरबी भाषा के अंदर अलग बेटे। समझ में आया? यदि उसको अलग समझ में नहीं आया, ए समझ में नहीं आया, तो बी सी या बे ते बताने की जरूरत क्या है? फालतू आगे पढ़ाने की जरूरत क्या? ए ही उसको याद नहीं हो रहा, ए ही उसको समझ में नहीं आ रहा, तो बे से क्या होता है, बात चाहिए। और दूसरी बातें ए बी सी बताने का कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट करना है। किसकी नब्ज को जानते नहीं, ओपनिंग करने वाले को भी पहले बाप का परिचय देना। ये है ऊंच से ऊंच बाप का ज्ञान, बाप ज्ञान का सागर। बाप ये ज्ञान अभी ही देते हैं। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती, पीछे शुरू होती है। भक्ति बाप कहते हैं जब मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है, जब मेरी क्या पूरी होने का समय आता है, निंदा। बाबा की भी क्या होती है, निंदा होती है, और उसकी निंदा भी पूरी होने का टाइम जब आता है, कभी अपना टाइम है, जब निंदा पूरी होने का टाइम आता है, पीछे शुरू होती है भक्ति, तब होता है, तब मैं आता हूँ। हाँ, बाबा की जब बुराई करना पूरा हो जाता है, जितनी हमने बुराई करनी है ड्रामा अनुसार उतनी बुराई पूरी कर देते हैं, तब बाप आता है। ठीक है, आधा कलप उनको निंदा करनी ही है, जिनकी भी पूजा करते हैं ऑक्यूपेशन पता ही नहीं। तुम बच्चे बैट समझाते हो, तुम बच्चे क्या करते हो, बैठ कर समझाते हो, कैसे आएगी, नेट चला जाएगा तो आवाज ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, पहले पिक्चर जाएगी, पता लग जाएगा पिक्चर गई, फिर नेट चला जाएगा, फिर नेट जुड़ेगा, तब आवाज आएगी। ऑक्यूपेशन का पता नहीं, तुम बच्चे बैठ समझाते हो, परंतु खुद का ही बाबा से योग नहीं तो औरों को क्या समझा सकेंगे। बस श्री बाबा कहते हैं परंतु योग में बिल्कुल रहते नहीं, तो विकर्म भी विनाश नहीं होते, धारणा नहीं होती। मुख्य बात है एक बात को याद करना, जो बच्चे जाने तो आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते हैं, उनमें देह अभिमान का अंश जरूर होगा। योग के बिगैर समझाना कोई काम का नहीं, फिर देह अभिमान में आकर किसी ने किसी को तंग करते रहेंगे। बच्चे भाषण अच्छा करते हैं तो समझते हैं हम जानी तू आत्मा है, बाप कहते हैं जानी तू आत्मा तो हो, परंतु योग कब, परंतु योग कम है। योग पर पूरा पुरुषार्थ बहुत कम है। बाप कितना समझाते हैं, चार रखो, मुख्य है ही योग की बात, मुख्य है ही योग की बात। बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक तो है लेकिन योग नहीं, लेकिन योग नहीं है। तो योग बिगर विकर्म विनाश नहीं होंगे। फिर पद क्या पाएंगे? योग में तो बहुत बच्चे फेल हैं, समझते हैं हम 100% हैं, समझते हैं हम 100% हैं, हैं फेल योग में, परंतु बाबा कहते 2%। 100% तो बाबा ने जीरो नहीं किया, थोड़ी सी लाज रख ली, का 2%। बाबा खुद बतलाते हैं, ब्रह्मा बाबा खुद बतलाते हैं, भोजन खाते समय याद में रहता हूं फिर भूल जाता, स्नान करता हूं तो भी बाबा को याद करता हूं, भल उनका बच्चा हूं फिर भी याद भूल जाती। समझते हो ये तो नंबर 1 में जाने वाला है। जरूर ज्ञान और योग ठीक होगा, फिर भी बाबा कहते योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखो फिर अनुभव सुनाओ। समझो दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं तो देखना चाहिए बाबा की याद में रहता हूं, बहुत मीठा माशूक है, उनको जितना याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे, हम तत्व प्रधान बन जाएंगे। अपने को देखें हम कितना समय याद में रहता हूं, बाबा को रिजल्ट बतानी चाहिए। याद में रहने से ही कल्याण होगा, बाकी जाति समझाने से कल्याण नहीं होगा। ज्यादा भाषण करते जाओ, ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, उससे कल्याण नहीं होगा। समझते कुछ नहीं है, अल्प बिगर काम कैसे चलेगा? एक अल्प अल्प का पता नहीं, बाकी तो बिंदी बिंदी हो जाती है। अल्प के साथ बिंदी देने से फायदा होता है, ये बात किसको समझ में आई है? वो तो पुरानी बात हो गई, वो तो मुरली में बहुत पीछे चली गई। अब यहां आकर वल्लभ बाबा ने कहा अल्लभ के साथ बिंदी देने से फायदा होता है। अल्लाह माना अल्लाह, अल्लाह माना एक, एक के साथ बिंदी लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, एक के साथ 2 बिंदी लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, बिना अल्लाह के बिंदी लगाएंगे तो 0000 रहेगा। तो बाबा का परिचय हो गया, अब उसके साथ जितना परिचय देते जाएंगे वो उसका ज्ञान बढ़ता जाएगा। समझाया? योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बाप को जो तरस पड़ता है ये क्या पद पाएंगे, तकदीर में नहीं है तो बाप को बाप भी क्या करे, बाप तो घड़ी घड़ी समझाते हैं, दैनिक गुण अच्छे रखो, बाप की याद में रहो। याद बहुत जरूरी है, याद से लव होगा तभी श्रीमत पर चल सकेंगे। प्रजा तो ढेर बननी है, तुम यहां आए ही हो ये लक्ष्मी नारायण बनने, इसमें मेहनत है, बस स्वर्ग में जाएंगे। परंतु सदाएं खाकर फिर पिछाड़ी में आकर पद पाएंगे। थोड़ा सा बाबा तो सब बच्चों को जानते हैं ना, जो बच्चे योग में कच्चे हैं वो देह अभिमान में आकर रूठते और लड़ते झगड़ते रहते हैं। जो पक्के योगी हैं उनकी चलन बड़ी रॉयल होती, शानदार होती। बहुत थोड़ा बोलेंगे, यज्ञ सर्विस में भी रुचि रहेगी, यज्ञ सर्विस में हड्डियां भी चली जाएं। ऐसे ऐसे कोई हैं भी, परंतु बाबा कहते याद में जागती रहो तो बाप से लव होगा और खुशी में रहेंगे। बाप कहते हैं मैं भारत खंड में ही आता हूँ, भारत को ही आकर ऊंचा बनाता हूँ। सतयुग में तुम विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, फिर दुर्गति किसने की? रावण ने। कब शुरू हुई? द्वापर से। आधा कल्प के लिए सदगति एक सेकंड में पाते हो, 21 जन्मों का वर्षा पा लेते हो। तो जब भी कोई अच्छा आदमी आए तो पहले पहले उनको बाप का परिचय दो। बाप कहते हैं बच्चे इस ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होगी। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा चल रहा है, सेकंड बाय सेकंड, ये बुद्धि में याद रहे तो भी तुम अच्छी रीति स्थिर रहेंगे। यहां बैठे हो तो भी बुद्धि में रहे ये सृष्टि चक्र जू माफिक कैसे फिरता रहता है। सेकंड सेकंड टिक टिक होती रहती है, ड्रामा अनुसार ही सारा पार्ट बज रहा है। एक सेकंड पास हुआ खत, रोल होता जाता है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते फिरता है। ये है बेहद का ड्रामा। बुद्धे आदि जो हैं उनकी बुद्धि में ये बातें बैठे बैठ ना सके, क्योंकि पक्की लकड़ी है, ज्ञान भी बैठ ना सके, योग भी नहीं, फिर भी बच्चे तो हैं। हाँ, सर्विस करने वालों का पद ऊंच है, बाकी का कम पद होगा, ये पक्का ख्याल रखें। ये बेहद का ड्रामा है, चक्र फिरता रहता है, जैसे रिकॉर्ड फिरता रहता है ना, हमारी आत्मा में भी ऐसे रिकॉर्ड भरा हुआ है। छोटी आत्मा में इतना सारा पार्ट भरा हुआ है, इनको ही कुदरत कहा जाता है। छोटी सी आत्मा, कितनी छोटी सी आत्मा है देखो, कि जिसको हमें आंखों से सोचा, दुनिया के किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देख सकते, उस आत्मा में क्या भरा हुआ है? इतना बड़ा पार्ट भरा हुआ है 5000 साल। इसी को कुदरत कहा जाता है, ऑटोमेटिक। देखने में तो कुछ भी नहीं आता है, ये समझ की बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले समझ ना सके, इनमें हम जो बोलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है, फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। ऐसी समझ कोई के पास नहीं। जो महारथी होंगे वे घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, पहले पहले तो गांठ बांधो बाप की याद की। बाप कहते हैं मुझे याद करो, आत्मा को अब घर जाना है, देखे सब संबंध छोड़ देने हैं, जितना हो सके बाप को याद करते रहो। ये पुरुषार्थ है गुप्त। बाबा राय देते हैं, परिचय भी बाप का ही दो। याद कम करते हैं तो परिचय भी कम देते हैं। पहले तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठे, बोलो अब लिखो। बरोबर वो हमारा बाप है, देह सहित सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करना। याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में तो दुख दर्द होता नहीं। क्या सुना है आपने? क्या सुना है आपने?
मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति में दुख दर्द होता नहीं।
ठीक है, ये बात
ठीक है भाई।
दिन प्रतिदिन अच्छी बातें समझाई जाती हैं, आपस में भी यही बातें करो। लायक भी बनना है, बनना चाहिए ना। ब्राह्मण होकर और बाप की रूहानी सेवा ना करें तो क्या काम का? पढ़ाई को तो अच्छी रीति धारण करना चाहिए ना। बाबा जानते हैं बहुत हैं जिनको एक अक्षर भी धारण नहीं होता है, यथार्थ रीति बाप को याद करते नहीं है। राजा रानी का पद पाने में मेहनत है, जो मेहनत करेंगे वही उच्च पद पाएंगे। मेहनत करें तब तो राजाई में जा सकते। नंबर वन को ही स्कॉलरशिप मिलती है, ये लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप लिए हुए हैं, फिर है नंबर वन। बहुत बड़ा इम्तिहान है ना, स्कॉलरशिप का ही की ही माला बनी हुई है। 8 रत्न है ना, 8 है, फिर है 100, फिर है 16000। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में पिरोने लिए? अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बात तो है कल्याणकारी, तो कल्याण के लिए ही राय देते हैं। कल्याण तो सारी दुनिया का होना है, परंतु नंबर वार है। तुम यहाँ बाप के पास पढ़ने के लिए आए हो, तुम्हारे में भी वे स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान देते, कोई तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ऐसे भी बहुत समझते हैं जो भाग्य में होगा। पढ़ाई की एम ही नहीं है तो बच्चों को याद का चार्ज रखना है। हमको अब वापिस घर जाना है, ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ जाएंगे। ज्ञान का पाठ पूरा हो जाता है। आत्मा इतनी छोटी, उनमें कितना पाठ, वंडर है ना। ये सारा अविनाशी ड्रामा है, ऐसे ऐसे भी तुम अंतर्मुखी हो, अपने से बातें करते रहो तो तुमको बहुत खुशी हो कि बाप आकर ऐसी बातें सुनाते हैं कि आत्मा कब विनाश नहीं होगी। ड्रामा में एक एक मनुष्य का, एक एक चीज का पार्ट नूंदा हुआ है, पार्ट नूंदा हुआ है। इनको बेअंत भी नहीं कहेंगे, अंत तो पाया है परंतु ये है अनादि। कितनी चीजें हैं इनको कुदरत कहें, ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते। कुदरत माना ऑटोमेटिक, ईश्वर की ऑटोमेटिक कुदरत नहीं कह सकते। वो कहते हैं हमारा भी इसमें पार्ट है, मैं भी इस पार्ट, मेरा भी पार्ट ऑटोमेटिक नूंदा हुआ है। मैंने आपके पार्ट को नहीं नूंदा, हर एक आत्मा का ऑटोमेटिक पार्ट नूंदा हुआ है। ये मेरी कुदरत नहीं, तो ये किसकी कुदरत है? ड्रामा की कुदरत है। अच्छा, ड्रामा ही ऑटोमेटिक, ये लाइन बहुत अच्छी तरह याद रखनी है, ईश्वर की नहीं, ड्रामा की। ठीक है, चा मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय बात की याद रहती है। याद में रहने से ही कल्याण है। नीचे माचू को बहुत प्यार से याद करना है, याद का चार्ज रखना है, महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है। ये बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं व करते हैं वे फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है। वरदान, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भाव, स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन, सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। प्रवृत्ति में रहते कहाँ रहना है? परवृत्ति, मतलब परवृत्ति मतलब इस प्रवृत्ति से, परिवार से भी अलग, इस देश से भी अलग न्यारा रहना, अर्थात आत्मिक शक्ति में रहना, दे और दे की दुनिया के संबंधों से न्यारा रहना, दे और दे की दुनिया के संबंधों से न्यारा। पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए ना देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। अच्छा, स्लोगन है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अति इंद्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। ये किसको समझ में आया है ये सब नहीं, कहां से पहरेदार उठा लाया, ये कौन सा पहरेदार है? कहां है ये पहरेदार, कहां होता है? अटेंशन रूपी पहरेदार, बाबा की श्रीमत के अनुसार अटेंशन रूपी पहरेदार, बाबा की श्रीमत के अनुसार अटेंशन होगी तो सबसे पहरेदार कहां बिठाना है? बाबा ने कहा अपने संकल्पों पर, कोई भी संकल्प मेरे को ऐसा ना आए जो बाबा की श्रीमत के अनुसार ना हो। संकल्प आने के कारण दो होते हैं, एक आंखें और एक कान। आंखें वो नहीं देखें जो बाबा की श्रीमत के विपरीत है, कान वो ना सुने जो बाबा की श्रीमत के विपरीत है, ठीक है? तब जो है ना आपका पहरेदार एक्यूरेट है तो फिर आपकी अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अव्यक्त इशारे कंबाइन रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो, सदा क्या बनो? विजयी बनो। बाबा को कंबाइन रखेंगे तो सदा विजयी रहेंगे, बाप को कंपेनियन तो बनाया है, अब उसे कंबाइन रूप में अनुभव करो और इस अनुभव को बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हूं, किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी, अनुभव होगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।